समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
तत्र प्रतीक तानता ध्यानम, अर्थात किसी एक विषय या विचार में मन की निरंतर एकाग्रता ही ध्यान है।
जी
हाँ, आज हम विश्व ध्यान दिवस मना रहे हैं। ध्यान एक प्राचीन भारतीय साधना है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और योग ग्रंथों में मिलता है। ये मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो इस दिन का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इसी के साथ ही कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता। हेलो, नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। गुड डे एवरीबॉडी। You are tuned to Parikrama on 100.1 FM with Shagun Chopra and Akarshita. And yes, as Akarshita was telling us, meditation. Meditation is a powerful tool and it can be a powerful self-care tool to reinforce treatments and improve your overall well-being, especially when it comes to today's stress-inducing lifestyle as it is nowadays, right, Akarshita? And the emphasis is laid on breathing and presence. This incorporates meditation into one's daily routine. Very easily we can incorporate into our daily routine. And even just for a few minutes, Akarshita, if we practice meditation, we can achieve a sense of calm and focus and overall well-being is kept in check. And with that, we are beginning our program. Well, we will be first giving you the headlines, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes. A lot is lined up for over the next 30 minutes, roughly. First, we are beginning with the news headlines. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone of fertilizer plant worth 10,601 crore rupees at Namrup in Assam. Ministry of External Affairs says there was no attempt to breach fence by protesters outside Bangladesh High Commission in New Delhi. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says Viksit Bharat G. Ram G. Bill is the next step forward of Manrega in favour of development and the poor.
रेलवे ने 26 दिसंबर से यात्री किरायों की युक्ति संगत बनाया है। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण उड़ान में देरी को देखते हुए परामर्श जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
So me and Akarshita, we are beginning our segment Dateline India. Today we are discussing about Bridges of India. Well, architecture against the odds. And we take you on a journey across a transforming India. An India where steel, concrete and vision are coming together to shape world-class infrastructure. And this includes, well, expressways to bridges stretching boldly across mighty rivers. India's infrastructure story, well, today is nothing short of remarkable. For decades, infrastructure was seen only as a support system, but now it has become a symbol of India's aspirations, connecting people, connecting markets, and dreams faster than ever before, Akarshita.
जब हम इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की बात करते हैं तो भारत के पुलों का विशेष उल्लेख होता है। ये संरचनाएं मात्र रास्ते नहीं हैं, ये क्षमता, आत्मविश्वास और नवाचार का प्रतीक है। ग्रामीण सड़कों से लेकर विशाल पुलों तक, स्मार्ट राजमार्गों से लेकर बहुमार्ग परिवहन केंद्रों तक संदेश स्पष्ट है, भारत भविष्य के लिए निर्माण कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां कनेक्टिविटी विकास को गति प्रदान करती है, बुनियादी ढांचा नागरिकों को सशक्त बनाता है और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता भारत की वैश्विक पहचान बन जाती है। नदियों और घाटियों पर बने ये भव्य पुल एक ऐसे राष्ट्र का प्रतीक है जो शक्ति, गति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है।
And this spans over turbulent rivers, deep gorges and restless seas, while India's bridges stand as silent testimonies to the country's engineering ambition and engineering marvels, should I say that? And they connect not just towns and regions, but people, cultures and economies as well, often in places where geography had long dictated isolation. And across India, bridges shape everyday life in ways well most of us we barely notice.
ये पुल उन दूरियों को कम कर देता है जिसे पार करने में कई दिन लग जाते हैं। दूरस्थ समुदायों तक पहुंच आसान बनाता है और प्रकृति के सबसे भयंकर प्रकोप का सामना भी करता है। देश भर में फैले अनगिनत पुलों के विशाल जाल में से कई प्रमुख पुल भारत के बुनियादी ढांचे की विशालता और दूरदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक पुल की अपनी एक कहानी है। साहसिक डिजाइन, कठोर मौसम और भूभाग की चुनौतियों से पार पाने की मानवीय दृढ़ संकल्प की कहानी। और शगुन, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बहुत ढेर सारे जो राज्य हैं उसके जो पुल हैं उनकी संरचनात्मक जो जिस तरीके से उनको बनाया जाता है वो भी अलग है। जैसे आप मेघालय का पुल देखिए, वहां पे जो पुल बनते हैं वो जो है पेड़ों की जड़ों से जो है बनाए जाते हैं। आप हिमाचल प्रदेश के पुल देखिए, वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ, क्योंकि हर जगह वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं।
दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड आकर्षिता, इंजीनियरिंग मार्वल्स देयर, राइट? एंड सो लेट्स टेल आवर लिसनर्स अबाउट वेरियस ब्रिजेस हियर, राइट,
जो अभी हाल फिलहाल में ही बनाए हैं।
एग्जैक्टली। सो फर्स्ट वी आर बिगिनिंग विद, लेट्स टेल यू अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शिवा अटल सेतु। So stretching across the Arabian Sea, like a bold stroke on the city's canvas, the Atal Setu, this is also known as the Mumbai Trans Harbour Link, this marks, Akashita, Mumbai's biggest step towards a horizon which is unrestrained by traffic and by time. Mumbai is famous for traffic, right? So it has been developed to ease the heavy traffic burden of Mumbai's island city. This is built using advanced construction and safety systems, and the bridge offers a faster and safer route across the bay and reduces accident risks and thereby improving the daily travel experience for the commuters there.
हालांकि इसका प्रभाव परिवहन से कहीं अधिक व्यापक है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद की है, साथ ही व्यापार और उद्योग के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है। समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर और जमीन पर 5.5 किलोमीटर तक फैले इस परियोजना को 17,843 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद परियोजना अपने निर्धारित समय पर पूरी हुई।
राइट आकर्षिता, सेकेंडली नाउ वी विल टेल यू अबाउट चुनाब ब्रिज। So India's engineering prowess has reached a new pinnacle. Our overall engineering prowess, this has reached a new pinnacle with the completion of the Chenab Bridge, the world's highest railway arch bridge. And it has been hailed as a testament to the brilliance and commitment of the country's engineers and workers as the project confronted hurdles. This includes difficult terrain, extreme weather to falling rocks in the mountains, very risky, making construction exceptionally demanding. So while millions travel to Paris to admire the Eiffel Tower, the Tour Eiffel, the Chenab Bridge rises 35 meters high, positioning itself not only as a vital infrastructural asset, but also as an emerging tourist landmark.
जी शगुन, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि जिस तरीके से हम लोग जो है पेरिस जाते हैं, लंदन जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, अब भारत में भी ऐसी कई जगह हैं जहां पे हमें जाना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चेनाब नदी के ऊपर बनाई ये विशाल पुल है। तो आइए इसकी विशेषताओं के बारे में बातचीत करते हैं। चेनाब नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वंदे भारत ट्रेनों के शुरू होने से कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 3 घंटे रह जाएगा। 1,315 मीटर लंबे इस स्टील आर्क ढांचे को 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका अनुमानित जीवन काल 120 वर्ष है। 20 years. और सबसे बड़ी बात कि इतनी ऊपर जो है वो ब्रिज बना है, हवा की गति इतनी तेज होगी फिर भी उसको सरवाइव करने का, ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी शगुन उसको बनाने में। और 1486 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेनाब रेल पुल भारत की महत्वाकांक्षा, तकनीकी उत्कृष्टता और उन्नत अवसंरचना क्षमताओं का प्रतीक है। और शगुन ये दिखाता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम एज अ राष्ट्र पूरा नहीं कर सकते, और हम एक डेवलपिंग नेशन है लेकिन बहुत ही जल्द एक विकसित राष्ट्र बनने की कगार पर है।
राइट आकर्षिता, वेल सेड। नाउ लेट अस टेल आवर लिसनर्स अबाउट अनदर मार्वल, द न्यू पंबन ब्रिज। This is the newly constructed Pamban Bridge. This connects Rameswaram with the mainland. And this is India's, pay attention listeners, India's first vertical lift railway sea bridge. It has emerged as a standout symbol of modern Indian infrastructure on the world map. And this is built at a cost which exceeds 700 crore rupees. And the stretch is around the 2.07 kilometer structure. This includes a 72.5 meter vertical lift section, and this can rise 17 meters, allowing ships to pass safely without halting train movement as well.
और शगुन जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत ढेर सारी चुनौतियां जो है रास्ते में आती हैं। ऐसे ही जब ये पुल बनना था तो बहुत ढेर सारी चुनौतियां आई कि जब नए पंबन पुल के निर्माण में कई बड़ी पर्यावरणीय और रसद संबंधी चुनौतियां सामने आई, जिनमें अशांत जल, तेज हवाएं, चक्रवात और भूकंपीय खतरे शामिल थे। साथ ही ज्वार भाटे की सीमित अवधि के भीतर दूरस्थ स्थल तक भारी सामग्री पहुंचाना भी एक चुनौती का काम था। नवोन्मेषी इंजीनियरिंग और उन्नत के माध्यम से 1400 टन से अधिक निर्माण कार्य, लिफ्ट स्पैन लॉन्च, 99 गर्डर और समुद्र में व्यापक ट्रैक और विद्युतीकरण कार्य बिना किसी दुर्घटना के पूरा किया गया। स्टेनलेस स्टील के सुदृढ़ीकरण, उच्च प्रदर्शन, सुरक्षात्मक कोटिंग्स और पूरी तरह से वेल्डेड जोड़ों से निर्मित ये पुल अधिक टिकाऊपन और कम रखरखाव लागत का वादा करता है। और शगुन, किस तरीके से जो है इसको बनाया गया, इतनी चुनौतियां थी, क्लाइमेट कंडीशंस ठीक नहीं थे और एक तरीके से भूकंप का भी खतरा बना रहता है, और इतने हाइट पे इतने बड़े पुल का निर्माण करना,
इट वाज रियली चैलेंजिंग। एंड आकर्षिता, लेट्स आल्सो टेल आवर लिसनर्स दैट अ स्पेशलाइज्ड पॉलीसिलोक्सेन फिनिश दिस शील्ड्स द स्ट्रक्चर फ्रॉम करोजन एंड दैट इंक्रीजेस इट्स लाइफ इफ आई टॉक अबाउट इट इन कॉमन टर्म्स। एंड दिस इज एन एसेंशियल सेफगार्ड व्हिच gave the demanding coastal conditions. Because of the demanding coastal conditions, as you were telling, there were so many things and challenges that they faced, and yet here it is. For this has been prepared for future growth with space for a second railway line as well, right?
9.15 किलोमीटर लंबी ये संरचना भारतीय सेना के अर्जुन और T-72 मॉडल सहित 60 टन के सैन्य टैंकों का भार सहन करने में सक्षम है, और ये क्षमता संरचना के सामरिक महत्व को काफी बढ़ा देती है।
एंड द ब्रिज दैट आकर्षिता इज टेलिंग अस अबाउट, दिस इज धोला सदिया ब्रिज एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज भूपेन हजारिका सेतु। दिस इज अ वाइटल लिंक, सर्व्स एज अ वाइटल लिंक बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश, providing the first permanent road connection between northern Assam and eastern Arunachal Pradesh. So this is built as a beam bridge. It sweeps over the Lohit River, one of Brahmaputra's major tributaries, connecting Dhola in Tinsukia district to Sadia in North district.
और एक बहुत विशेष पुल की बात कर लेते हैं, अंजी खड पुल हिमालय भूभाग को अपनी अनूठी भव्यता और विशालता से भेजता है। ये भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के कटरा बनिहाल खंड की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से लगभग 80 किलोमीटर दूर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित ये पुल अंजी नदी घाटी से 331 मीटर ऊपर उठता है।
राइट, एंड द अंजी खड ब्रिज, beyond its technical sophistication, this stands as a symbol of persistence and vision, which should also be applied to our lives as well. Persistence and vision, with completion in just 11 months and as part of the broader rail link connecting the Kashmir Valley with the rest of India, it is set to improve travel efficiency, enhance regional connectivity and unlock new economic opportunities.
To kul milakar keh sakte hain shagun ki Bharat ke pul mehaz bunyadi dhancha nahi hai, ve ek aise rashtra ko jodne wale irade ke prateek hain jo vishalta और विविधता से परिभाषित होता है। वे पर्वतों की ढलानों से उठते हैं, मानसूनी बादलों को चीरते हैं और उपमहाद्वीप के कुछ सबसे अशांत जलमार्गों की सतह को छूते हैं। तो कितना रोमांचक है यह अनुभव।
They reshape economies, redraw maps and reimagine how people move, live and dream. And as India continues to grow, its bridges will remain along the clearest expressions of a country in motion, always reaching forward, always building its own path.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
First, let's tell you about the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, PM Swanidhi scheme. This has emerged as a key livelihood support program for urban informal workers in Jammu and Kashmir. Let's listen to more details from our correspondent.
A total of 17,316 street vendors have been registered under the PM Swanidhi scheme across the Union Territory of Jammu and Kashmir so far. Against a sanctioned amount of around Rs. 50 crore, loans worth approximately Rs. 48 crore have already been disbursed, indicating a high conversion rate from sanction to actual credit flow. In J&K, where a large section of the urban workforce depends on small-scale vending for daily income, the scheme has gradually evolved into a critical source of livelihood stabilization. Majority of beneficiaries availed the first tranche of loans, which provides working capital of up to Rs. 10,000, now enhanced under revised guidelines. A significant number of vendors who repaid their initial loans on time have also moved to higher credit limits, reflecting improved credit discipline and business continuity. Street vendors who were earlier dependent on informal borrowing are now accessing institutional finance at subsidized rates. This has helped them restart businesses, replenish stock and meet household expenses. The scheme has been implemented primarily through urban local bodies and banking institutions, with vendor identification carried out by municipal authorities in cities and towns. Letters of recommendation were issued in cases where vendors lacked formal vending certificates, ensuring wider inclusion. Beyond credit, PM Swanidhi has also promoted digital transactions among street vendors. Beneficiaries are encouraged to adopt UPI and QR-based payments through cashback incentives, contributing to the gradual integration of small traders into the digital economy. With the scheme now extended at the national level and higher loan limits being rolled out, the administration accepts further expansion of PM Swanidhi coverage in Jammu and Kashmir. The focus in the coming months will be on saturation, timely repayment, and linking vendor families with other social security schemes. This is N. Gulshan Rana for Parikrama from RNU Akashwani Jammu.
दार्जिलिंग विश्व में श्रेष्ठतम चाय की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग व इसकी श्रेष्ठतम क्वालिटी के चाय उद्योग को संवर्धित करने के लिए दार्जिलिंग का हृदय कहे जाने वाले चौरस्ता में भव्य 3 दिवसीय दार्जिलिंग मेलो टी फेस्ट 2025 आयोजित किया गया। ये उत्सव दार्जिलिंग पहाड़ की चाय, कला, संस्कृति, खेल परंपरा और व्यंजनों का एक जीवंत उत्सव है, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों पर्यटक हजारों स्थानीय लोगों के साथ सहभागिता करते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ का ये सबसे बड़ा विंटर उत्सव है।
दार्जिलिंग के चौरस्ता में भव्य दार्जिलिंग मेलो टी फेस्टिवल का आयोजन दार्जिलिंग पुलिस तथा स्थानीय गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। दार्जिलिंग विश्व में चाय के श्रेष्ठतम क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग का हृदय कहलाने वाला चौरस्ता में इस वर्ष 3 दिवसीय 12वां दार्जिलिंग मेलो टी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों पर्यटकों के साथ हजारों स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस 3 दिवसीय उत्सव में 48 लाख रुपए की खरीद बिक्री हुई। इसी से इसकी भव्यता व महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बार के इस उत्सव की विशेषता यह रही कि दार्जिलिंग पुलिस ने चाय, कलाकृति, व्यंजनों, स्थानीय उत्पादों आदि से जुड़े उद्यमियों को निशुल्क स्टॉल प्रदान किया था। स्थानीय कलाकारों ने गीत, संगीत, नृत्य का अद्वितीय प्रदर्शन किया। वहीं यहां एक रॉक बैंड रजत रजत जयंती के अवसर पर रॉक बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी पुरस्कार राशि 28 लाख रुपया रखा गया था। इस उत्सव की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता रही एक साथ एक धुन में सैकड़ों गिटार वादकों ने मनमोहक गिटार धुन पर वादन किया। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता थी दिव्यांग जनों का 1.5 किलोमीटर मैराथन, जिसमें 50 से अधिक दिव्यांग जनों ने सहभागिता की। उत्सव का समापन दार्जिलिंग हिल मैराथन एकता दौड़ से संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों पुरुष महिलाओं ने भाग लिया। मैराथन में देश विदेश के धावकों ने भी सहभागिता जनाई, जिसका पुरस्कार राशि 9,80,000 रुपया रखा गया था। इस अवसर पर संबोधित करते हुए दार्जिलिंग के जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश ने कहा, इस उत्सव का उद्देश्य पहाड़ों की रानी कहलाने वाली दार्जिलिंग के गौरव को पुनः बहाल करना, यहाँ के युवाओं में उद्यमशीलता का जागरण करना, यहाँ की समृद्ध संस्कृति परंपरा कलाकृतियों के साथ चाय उद्योग को प्रोत्साहित करना है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल शगुन से।
यस आकर्षिता, इन द अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट चेसिंग अ टारगेट ऑफ 348 रन, इंडिया 120 for 9 इन 23.2 ओवर्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फाइनल एट द आईसीसी एकेडमी ग्राउंड इन दुबई व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। Earlier put into bat, Pakistan posted 347 runs for the loss of 8 wickets in stipulated 50 overs.
अब हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों की और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember revolutionary Thakur Pyarelal, who was born on December the 21st, 1891, in Daihan village of Rajanandgaon district, Chhattisgarh. He awakened the public for the national movement and is widely regarded as the founder of the labor movement, as also the leader of the cooperative movement in Chhattisgarh.
Main mazdoor mujhe devon ki basti se kya, agnit bar dhara par maine swarg banaye.
For his immense contribution to national life, he was awarded the honorary title of Tyag Murti, which means epitome of sacrifice.
After completing his higher education in law, he came in contact with the revolutionaries of Bengal in 1906. He started the promotion of revolutionary literature and organizing the students. In 1920, Rajanandgaon mill workers, led by Thakur Pyarelal Singh, started a strike that lasted more than 37 days. This was India's first long-term strike and it managed to reduce the workers' working hours.
With the initiation of the non-cooperation movement by Mahatma Gandhi, he began to campaign for Indian independence. In 1923, Thakur Pyarelal led flag satyagraha in various regions of Chhattisgarh. In 1924, he led another mill workers' strike in Rajanandgaon, resulting in further concessions to the workers. He moved to Raipur in 1925 and worked towards Hindu-Muslim unity and upliftment of so-called lower caste. He was imprisoned many times by the British for his nationalistic activities.
Pyarelal was elected as president of Raipur municipality in 1937. He established Chhattisgarh Weaver Cooperative Association in 1945 to organize the weavers of Chhattisgarh region. After independence, Thakur Pyarelal travelled to the northeastern parts of India in 1950 with an aim to encourage education among the population, launching the publication Rashtra Bandhu with the same purpose.
In 1951, Pyarelal resigned from Congress and became a member of the All India Kisan Mazdoor Party, a Gandhian organisation led by Chairman Acharya Kripalani. He was elected to the Legislative Assembly from Raipur in 1952 and became the leader of the opposition. He helped extend the Bhudan and Sarvodaya movements of Vinoba Bhave to Chhattisgarh. He travelled extensively on foot across the region. Over the next 2 years, visiting villages to promote the Bhudan movement.
He started in 1954 with the aim to walk 2,200 miles and visit over 300 villages in 3 months to spread the message of the Bhudan movement. Despite being unwell, on the 20th of October, he continued to deliver a speech before suffering a fatal heart attack later that day. On the 22nd of October 1954, he was cremated on the banks of the river Karun. We salute this great nationalist who continued to work for betterment of citizens till the very end.
On 21st of December 1909, Anant Lakshman Kanhere, a 17-year-old student of Aurangabad, shot the magistrate of Nashik, Jackson, at a theatre where a drama was to be staged in his honour on the eve of his transfer. It is said that Jackson was shot as he was instrumental in getting freedom fighter and elder brother of Vinayak Damodar Savarkar, Ganesh Savarkar, arrested and finally prosecuted.
Jackson got Ganesh Savarkar arrested for printing a 16-page book of songs of Kavi Govind, as he believed that Abhinav Bharat Society was engaged in seditious activities. Krishnaji Karve, Vinayak Deshpande and Anant Kanhere decided to kill Jackson before his transfer to the post of Commissioner of Bombay. Anant decided to execute the plan at Jackson's farewell function.
On 21st of December 1909, when Jackson came to the farewell function, Anant jumped in front of him and shot 4 bullets, killing Jackson immediately. The murder created a great deal of sensation in Nashik, Pune and Mumbai, and it even created disquiet among Indian nationalists because of Jackson's reputation as a sympathetic and popular district officer.
Anant Kanhere, Krishnaji Karve and Vinayak Deshpande were prosecuted in Bombay court and attained martyrdom on the 19th of April 1910. We salute the martyrs.
आज आवाज के जादूगर और रेडियो के इतिहास में पहले जॉकी के रूप में प्रसिद्ध अमीन सयानी की जयंती है। रेडियो जॉकी के रूप में वे विश्व के श्रेष्ठ जॉकी माने जाते थे। गीतमाला प्रोग्राम के जरिए सुनी गई अमीन सयानी की आवाज बहनों और भाइयों आम लोगों को काफी लंबे समय तक गुदगुदाती रही।
हेलो बहनों और भाइयों, आज आपके इस रेडियो दोस्त अमीन सयानी का दिल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तो खुशी के मारे झूम रहा है कि आहा, आज गीतमाला की छाओ में के इस वॉल्यूम नंबर 49 में हम फिल्म संगीत के गोल्डन पीरियड के साल 1980 यानी 1980 के दूसरे हिस्से का भी पूरा पूरा मजा लेने वाले हैं। मगर भाई मेरे दिल का दूसरा हिस्सा जो है वो कुछ कुछ उदास सा है, क्योंकि इसके अगले साल यानी 1981 से तो बहुत ज्यादा म्यूजिक कंपनीज आ गई मार्केट में एचएमवी सारेगामा के अलावा।
सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। करीब 46 वर्ष तक रेडियो सिलोन के जरिए अमीन सयानी की प्रस्तुति और बाद में विविध भारती पर इसके प्रसारण को लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने भारत में ऑल इंडिया रेडियो को प्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई।
Well, yes, Akarshita, to his audience, he was much more than a presenter, blessed with a warm, kind voice. Well, his inimitable style of broadcasting conjured the image of a sincere friend speaking directly to each listener through their radio set.
आज उड़ीसी शास्त्रीय संगीत की गायिका और संगीतकार श्याम मणि देवी का जन्मदिन है। वे उड़ीसी शास्त्रीय संगीत जैसे उड़ीसी, छंदा, चंपू आदि की लोकप्रिय प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती हैं।
Today, it's also Govinda's birthday. The actor has gained acclaim for his unique talent and comedy.
यार अनजाने मैंने ऐसे रास्ते पे कदम रख दिया कि मैं जितना आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी मंजिल उतनी ही दूर होती जाएगी। ये बाबूजी ने बहुत पहले कहा था कि जब दिमाग काम नहीं करे तो बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो।
गोविंदा की हीरो नंबर एक, साजन चले ससुराल, राजा बाबू और कुली नंबर एक जैसी फिल्में सुपरहिट हुई। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
मैं तेरा हीरो नंबर। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और शगुन को, परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।